जय राधा माधव कुंज विहारी जय राम जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you. Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Radha Giri Hari Radha Giri Hari Radha Jagannath, Jagannath, Balabhadra, Jaya Subhadra. Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari
ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟಗುರುಸುದೇ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಜಯ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟಗುರುಸುದೇ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವ ಠಾಕುರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಬೃಂದ ಕಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಾಜಿ ಕಿ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ನಿತೈ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ಶತಜಯನ್ಮುದಿರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇ ಸುಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮಾ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿ ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಸಲಕಯ ಚಕ್ಷುರುನಿಮಿಳಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋವೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಯಾಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ ವೈಷ್ಣವಾಂಸ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥ ನಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧಯಿತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री शाखा निसंस्तन हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महामहोत्सव मनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति के द्वारा आकर्षित होते हैं और जब संसार में कुछ उनके शुद्ध भक्त रह जाते हैं तो खास करके शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्ति के द्वारा आकर्षित होकर के भगवान वैकुंठ छोड़ देते हैं। वैकुंठ छोड़ने का एकमात्र रहस्य कारण यह है भगवान शुद्ध भक्ति के द्वारा मोहित हो जा आकर्षित हो जाते हैं और शुद्ध भक्त उनको आकर्षित कर लेता है। खास करके यही कारण के लिए वो संसार में प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापन करना और अधर्म की विनाश करना वो कहीं पर रह करके कर सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी गाती है अपनी स्तुति में भक्ति योग विधानार्थ आप हे प्रभु आप ये संसार में आए हो प्रकट हुए हो इस चीज के लिए वो है भक्ति योग विधानार्थ है भक्ति योगों को इस संसार में स्थापन करने के लिए तो आप इस संसार में आए हो और भगवान अपने भक्ति और लीला को प्रदर्शन करने के लिए भक्ति योग को स्थापन करने के लिए संसार के भीतर। तो कुंती महारानी अपनी स्तुति में भी ये बात को कहती है तिर्यक मनुष्य पशु हाँ कभी आप तो कुंती महारानी कहती है कि कभी आप जलचर बन जाते हो कभी स्थलचर बन जाते हो और कभी मनुष्य कभी ऐसे ऐसे आप बन जाते हो। जब आप इस संसार में लीला करने के लिए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जब पशु बन जाते हैं तो पशु रूप में भी भगवान के भक्त आनंद लेते हैं। लेकिन इस प्रकार जब भगवान प्रकट होते हैं संसार के भीतर तो साधारण मनुष्य उसके ऊपर हंसते हैं। अवधानंदी माम भगवान कहते हैं मूढ़ व्यक्ति नास्तिक लोग इस रहस्य को मेरा ये जो अवतार का रहस्य को मेरे इस प्रकार का जो रूप लेकर के मैं प्रकट हुआ हूँ इस विषय में उनको कुछ ज्ञान नहीं होता वो रहस्य को समझ नहीं पाते। तो मलेशिया में मुस्लिम लोग ज्यादा है और कुछ थोड़ा सा साउथ के लोग रहते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग मलेशिया में तो हनुमान का पूजा करते हैं कभी कभी भगवान का जो मत्स्य अवतार है उनका भी आदर कर प्रेम करते हैं भगवान का भक्ति करते हैं मत्स्य अवतार कभी भगवान का नृसिंह अवतार का उसका भी भक्ति करते हैं। जब साउथ के लोग भारत के लोग ये मत्स्य अवतार की नृसिंह अवतार की बराह अवतार की इस प्रकार का पूजा करते हैं तो मलेशिया में जो मुस्लिम लोग है तो उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं ओ अरे देखो देखो ये तो वो लोगों का मक्की भगवान है तो ये पीग भगवान है ये तो फीस भगवान है ये फीस कैसे भगवान है ये मंकी कैसे भगवान है क्योंकि हनुमान जी पूजा करते हैं तो वो लोग जान नहीं पाते हैं तो कहते हैं मंकी भगवान हो गया ये पीग भगवान हो गया पीग बराव तो पीग भगवान हो गया ये फीस भगवान हो गया तो ये की रकम भगवान है ये सब की रकम का भगवान है ये हिंदुओं का की रकम की प्रकार का भगवान है ऐसे वो लोग समझ नहीं पाते हैं तो हंसते हैं। तो जो भी है भगवान अपनी लीला को संसार में रखने के लिए स्थापन करने के लिए तो उनका ऐसे ऐसे होकर के आते हैं। तो अनेक भक्तों के मुंह से हम लोग सुने हैं, श्रवण किए हैं कि भगवान के बचपन की लीला, खास करके भगवान की बचपन की लीला जो होती है बड़ी आकर्षक मधुर होती है, मीठा होती है। चाहे भगवान का बचपन की लीला हो या पौगंड या जौवन की, कुछ भी हो, किसी की जो भी है, जो भी लीला भगवान के बड़े ही अट्रैक्ट आकर्षणीय होती है। और बद्ध जीव को भगवान इसलिए लीला करते हैं, बद्ध जीव को अपने लीला के प्रति आकर्षित करके सोधाम प्रत्यावर्तन करने के लिए एक खुराक प्रदान करते हैं, एक प्रकार का हिम्मत देते हैं कि बद्ध जीव बड़े कमजोर होता है, तो ऐसे कमजोर बद्ध जीव के भीतर है कि उत्साह प्रदान करने के लिए लीला रचते हैं। और हर कोई भगवान की लीला के द्वारा मोहित होता है, आकर्षित होता है, आनंद लेना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब थे, अनेक अनेक बचपन के लीला की है, बाल लीला की है। और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, वो द्वारका लीला के विषय में आज की क्लास था लोकादक्ष प्रभु का, मैं बताया था हमारे प्रभु को, लेकिन मुझे बता दिए। तो जो भी है, तो भगवान के द्वारका लीला, उनका जो जौवन की लीला कोई बताया नहीं है, कोई भक्तों ने ऐसा कहा नहीं है। तो हम थोड़े बहुत द्वारकी की लीला के विषय में भगवान के श्रवण करेंगे, कहेंगे आप लोगों को, प्रयास करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राजा थे और द्वारका में लीला कर रहे थे, ठीक उसी समय द्वारका में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्राजित। भगवान के द्वारका की लीला के समय एक राजा बने, उनका नाम हुआ सत्राजित। अरे सत्राजित भगवान के भक्त नहीं थे, जो कि सारे द्वारका के भक्त भगवान के भक्त थे, वो जगह पर ये जो सत्राजित थे वो भगवान के भक्त नहीं थे, और सूर्यदेव के उपासक थे, सूर्यदेव की उपासना कर रहे थे और अपनी उपासना साधना तपस्या पूजा पाठ के द्वारा वो सूर्यदेव को आकर्षित कर लिए थे, सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिए थे। और सूर्यदेव उनके पूजा तपस्या के द्वारा संतुष्ट होकर उनको एक मणि प्रदान किए थे, वो मणि का नाम था श्यामंतक मणि। सूर्यदेव सत्राजित राजा को जो मणि प्रदान किए थे वो मणि का नाम था श्यामंतक मणि। और इस श्यामंतक मणि को लेकर जदुवंश और सत्राजित राजा के भीतर मनमुटाव उत्पन्न हो गया था, मनमालिन्य हो गया था। बाद में सत्राजित राजा तो ये मणि के साथ अपने कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करके इस समस्या का समाधान किए थे। तो प्रश्न यहाँ पर है, जो सारे द्वारका के लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो वो जगह पर सत्राजित जैसे इतने बड़े राजा वो क्यों सूर्य देवता का भक्त बन गए, सूर्य देव के साधक क्यों बने ना? भले वो राजा थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर भौतिक कामनाएं थे। और भगवान भी कहते हैं जो लोगों के भीतर भौतिक कामना होती है वो मेरे भक्त बन नहीं पाते। जो लोगों के भीतर भौतिक इच्छाएं बलवती होती है वो मेरे शरण को अस्वीकार करते हैं, अवहेला कर देते हैं। काम स्थिति हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोगों का बुद्धि काम के द्वारा, काम वासना के द्वारा मारी गई है, जो लोग कामी है, तो वो लोग भगवान का शरण को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण में चले जाते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, तो ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं होते, क्योंकि उनको काम वासना और काम वासना का तृप्ति भगवान के द्वारा नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान का शरण को छोड़कर देवा देवी के शरण में चले जाते हैं। तो जो भी है, तो ये सत्राजित राजा भगवान का भक्त नहीं थे और सूर्यदेव को उपासक थे। तो एक दिन ये सत्राजित राजा सूर्यदेव के द्वारा दिया हुआ ये मणि को अपने गले में पहनकर द्वारका नगरी में प्रवेश किया। जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया सत्राजित राजा, सारे द्वारका के लोग चकित रह गए, कौन है पुरुष इतने ज्योतिर्मान, इतने तेज निकल रही है उनके शरीर से, कौन है पुरुष, अद्भुत व्यक्ति है। तो ये जो सत्राजित राजा मणि पहना था, ये मणि से ज्योति निकल रहा था, सूर्यदेव के द्वारा जो दिया हुआ मणि है वो पहन रखने के कारण उनके शरीर से मणि से ज्योति निकलने के कारण वो जो उनको पहचान नहीं पाए, द्वारका के लोग ये सत्राजित राजा को पहचान नहीं पाए। यदि वो देखे थे सत्राजित राजा को द्वारका के लोग पहले, लेकिन मणि के कारण वो उनको पहचान नहीं कर पाए और दौड़ के गए भगवान के पास, गए दौड़ के और जाकर के कहे प्रभु हर ये क्यों पहचान नहीं पाए और क्यों सूर्यदेव करके समझ लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में राज कर रहे थे अनेक देवता लोग उनके दर्शन लेने के लिए द्वारका में पधारते थे, आते थे। भगवान जब द्वारका में राजा बने थे तो देवता लोग भगवान का दर्शन लेने के लिए वो आते थे। तो द्वारका के लोगों को ऐसा भांति हुआ, बोध हुआ कि ये सूर्य देवता लोग जब आ रहे हैं तो ये सूर्यदेव भी भगवान का दर्शन लेने के लिए आए होंगे। तो दौड़ के गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बताएं कि प्रभु आपका दर्शन लेने के लिए साक्षात सूर्यदेव आए हुए हैं। तो ये बात सुनकर भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं कौन आए हुए हैं। तो आपने द्वारका के वासियों का बात सुनकर तो कहें इतने भ्रम में मत रहो, ये कोई सूर्यदेव नहीं है, ये सत्रहजी राजा है। वो मणि पहन करके वो आया है द्वारका का लोगों को दिखाने के लिए, वो मेरा दर्शन लेने के लिए नहीं आया है। वो आया किस लिए ना, अपने मणि को अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए। हाँ तो ये ऐसा बात होती है। तो ये सत्रह ना सब क्या नाम उनका, सामंतक मणि, ये सामंतक मणि का विशेषत्व ऐसा है। तो ये मणि एक उपयुक्त स्थान में जब रखा करके जब ब्राह्मण के द्वारा अर्चित होती है, ब्राह्मण के द्वारा पूजित होती है, वो रोज ये मणि 170 पाउंड रोज स्वर्ण प्रदान करता है, सोना प्रदान करता है। ये मणि का विशेषत्व ऐसा है, जहां पर ये मणि का उपास पूजा होती है ब्राह्मणों के द्वारा, ये मणि रोज 170 पाउंड सोना रोज, एक दिन नहीं, रोज 170 पाउंड सोना प्रदान करता है ये मणि। और ये मणि जहां पर पूजा होती है वो जगह पर कोई दुर्भिक्ष, महामारी, कोई प्रकार का अमंगल और कई प्रकार का शीत ग्रीष्म का प्रकोप नहीं रहता है, ये मणि जहां पर पूजा होती है। तो मणि का ऐसा महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी वासियों को अपने लोक शिक्षा देने के लिए वो कहे तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा के पास होनी चाहिए। तो सत्राजित राजा को कहे देखो तो आप ये मणि को राजा को प्रदान कर दो। अब उस समय द्वारका के राजा भी थे राजा उग्रसेन, तो आप ये मणि को उग्रसेन महाराज को प्रदान कर दो। और ये सत्राजित राजा अतिशय और दूसरे देवता का भक्त होने के नाते और अतिशय भौतिकवादी होने के नाते भगवान के वचन को स्वीकार नहीं कर पाया। जब शिष्य का पतन हो जाती है तब वो गुरु का वचन को, गुरु का आदेश को पालन करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। तो वो स्थिति में समझना चाहिए उस शिष्य गिर गया। तो गिरने के कारण वो भगवान का आदेश और गुरु के आदेश को पालन करने के लिए अक्षम होता है। तो ये अतिशय भौतिकवादी होने के कारण और दूसरे देवता का भक्त होने के कारण भगवान का ये वचन को ग्रहण करने के लिए, पालन करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाया। और ये मणि को पूजा करके वो रोज इतने परिमाण का सोना प्राप्त करने के लिए ये बुद्धिमानी समझ लिया सत्यराज राजा। ये बुद्धिमानी है, रोज मैं सोना ये मणि को पूजा करके रोज इतने परिमाण का सोना मैं प्राप्त करूंगा, ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी है, इस प्रकार का अपने मन में सोच लिया। और भगवान श्री कृष्ण को ये मणि और नहीं दिया। यदि कोई भौतिक ग्रस्त लोग रोज इतने परिमाण के स्वर्ण प्राप्त करें तो कृष्ण भावना में अग्रगति नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति को इतने परिमाण में रोज सोना प्राप्त हो तो फिर वो कृष्ण भावना मृत के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो वो जगह पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे कट्टर भौतिकवादियों को, जो मांगने पर नहीं देते, तो ऐसे कट्टर भौतिकवादियों से वो जबरदस्ती उनका धन को छीन लेते हैं, उनका धन को छीन करके उनको भक्त बना देते हैं। ये भगवान का वो ऐसे लोगों के ऊपर एक स्वतंत्र कृपा है, ऐसे स्वतंत्र कृपा प्रदर्शन करने के लिए उनका धनराशि को भगवान ले लेते हैं। तो आगे लिखा जाता है तो सत्राधिपति राजा को भगवान श्री कृष्ण कहने पर जब इस मणि को नहीं प्रदान नहीं किए तो आगे जाकर लिखा जाता है ये भौतिक ना ये भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति होने के कारण और ये सामंतक मणि के प्रति लगाव होने के कारण लिखा जाता है ये मणि के कारण से सत्राधिपति राजा का मृत्यु हो जाती है और ये मणि को उनसे छीना जाता है। तो आगे ऐसे बात होती है कि सत्राधिपति राजा का एक छोटे भाई है, उनका छोटे भाई का नाम था प्रसन्न। और ये प्रसन्न सत्राधिपति राजा का छोटा भाई प्रसन्न अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए ये मणि को अपने गले में पहनकर वो घोड़ा के ऊपर बैठकर जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए। तो शिकार जंगल के भीतर प्रवेश करके जब शिकार खेल रहा था शिकार कर रहा था तो इधर उधर हो रहा था, अचानक एक हिंस्र भयंकर शेर उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको मारकर उनका घोड़ा को मारकर गुफा के भीतर ले गया। ये शेर गुफा के भीतर ले गया। जब ये बात मरकट राज जाम्बवान को पता चला तो तुरंत गुफा के भीतर प्रवेश किया और देखा वहां पर एक व्यक्ति का मृत्यु हुई है और उसके साथ साथ मृत्यु हुई है। तो जाम्बवान वहां पर शेर को मार करके वो शेर से वो सामंतक मणि को ले गया और ये मणि को लेकर अपने घर में जाकर के अपने छोटा सा बालक था वो बालक को दे दिया। ये मणि का कोई महत्व नहीं समझा मरकट राज जाम्बवान, इस सामंतक मणि का कोई महत्व को नहीं देखा, समझ ही नहीं पाया, तो वो मणि को अपने छोटा सा बालक को दे दिया खेलने के लिए। और ये खेल रहा था और उसी समय द्वारका में गुजब उठा, द्वारका में बहुत बड़ा गलत प्रचार हो गया और ये सत्राधिपति राजा जो प्रसन्न का भाई था, सत्राधिपति राजा देखा कि मेरा भाई जंगल गया था शिकार के लिए और वापस नहीं आया तो बड़े विचलित हो गया और उन्होंने मन में विचार कर लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण ये मणि को पहले मुझे मांग रहे थे, मैं नहीं दिया तो न देने के कारण तो वो मेरा भाई को मार करके उनसे जबरदस्ती उस मणि को ले गया है। इस प्रकार द्वारका में सत्राधिपति राजा ये बात को फैलाने लगा। जब ये बात प्रचार हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण के कान में जो पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण को बात अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण विचार किए कि ये गलत गुजब का कुछ प्रतिकार हो तो इसीलिए वो द्वारका के कुछ विशिष्ट नागरिकों को लोगों को लेकर जंगल के भीतर प्रवेश किए। वो तो भगवान ये जानते हैं रहस्य क्या बात है। तो जंगल के भीतर प्रवेश किए, जंगल के भीतर प्रवेश करके तो इधर इधर हो रहे थे, गुफा के भीतर गए और देखें वहां पर एक व्यक्ति का मृत्यु हुई है और उसके साथ साथ एक शेर का भी मृत्यु हुई है। तो पता करते 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 इधर जंगल द्वारका वासियों के साथ जंगल में इधर इधर होते होते तो देखे ये बहुत बड़ा सुरंग है, और ये सुरंग को देख के द्वारका के लोग डर गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखे तो द्वारका के लोग डर रहे हैं तो द्वारका के लोगों को उस सुरंग के द्वार देश में खड़ा करके वो अंदर गए, सुरंग के अंदर गए और सुरंग के अंदर जाते जाते वो जाम्बवान के घर तक पहुंच गया। बहुत बड़ा लंबा सुरंग था, वो सुरंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जाके वो जाम्बवान के घर पर पहुंचे। जब जाम्बवान के घर पर पहुंचे वहां पर वो देखें तो जाम्बवान का एक छोटा बच्चा वो सामंत मणि को लेकर के खेल रहा है और उसके पास एक दासी खड़ी है, एक दासी वहां पर खड़ी है और मणि के साथ बच्चा बालक खेल रहा है। तो वहां पर जाकर श्री कृष्ण पहुंचे और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे तुरंत वो दासी जो थी बच्चा का देखभाल के लिए धाई तो तुरंत चिल्लाने लगी और जब चिल्लाई तो चिल्लाहट को सुनकर घर के भीतर जो जाम्बवान था तुरंत बाहर क्रोधित होकर जब घर से निकला जाम्बवान वो क्रोधित होकर वो बाहर आकर के पहुंचा और क्रोधित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे, यदि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जाम्बवान बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इतने बड़े भक्त होने के बाद भी, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी जब भक्त के भीतर क्रोध उत्पन्न होती है तो फिर वो भगवत शक्ति को खो देता है, अपने आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठता है। ठीक वही दशा जाम्बवान का हुआ। यदि वो भगवान का भक्त था लेकिन क्रोध का वशवर्ती होने के कारण, सामने भगवान को दर्शन करने के कारण बाद भी उन्होंने भगवान को पहचान नहीं पाया और भगवान के साथ युद्ध करने के लिए ललकारा, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आगे हुआ। तो आगे आया और आकर के भगवान को युद्ध के लिए बुलाया और भगवान श्री कृष्ण भी जाम्बवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और दोनों के जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण के भीतर बहुत जोर से युद्ध हुआ। और पहले तो एक दूसरे के ऊपर अस्त्र के द्वारा युद्ध करने लगे, बाद में पत्थर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके। वो भगवान जाम्बवान भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पत्थर फेंका और भगवान भी उनके ऊपर पत्थर फेंके। बाद में बड़े बड़े पेड़ को खार करके एक दूसरे के ऊपर फेंके और बाद में हताहती होने लगे और बाद में एक दूसरे को मुखी मानने लगे। तो इसी प्रकार दोनों के भीतर 28 डेज, जो 28 दिन तक दिन रात मिला करके 28 दिन तक दोनों के भीतर बहुत जोर से युद्ध हुआ। तो 28 दिन के बाद, 28 दिन के युद्ध के बाद तो जाम्बवान को थोड़ा थोड़ा थकावट होने लगा। जाम्बवान थोड़ा क्लांत टायर्ड थक गया। जाम्बवान उस समय बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति था और वो उनको पता था उनके अलौकिक शक्ति के विषय में, लेकिन 28 दिन युद्ध के बाद वो थक गया तो उनको एहसास हुआ मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो उनको समझ में आया। और दूसरा कारण वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, जब कोई भक्त भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होता है तो अंधा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति, खाली भक्त नहीं, जब कोई व्यक्ति संसार के भीतर भौतिक पदार्थ के प्रति आकर्षित होता है, आसक्त होता है, तो उनका दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। तो वही दशा हुआ जाम्बवान का। तो जाम्बवान का अपने शारीरिक शक्ति के प्रति बहुत बड़ा आसक्त था और इस सामंतक मणि के प्रति भी वो आसक्त था। वो सामंतक मणि के प्रति आसक्त होने के कारण नाते तो भगवान श्री कृष्ण जब वो सामंतक मणि के पास पहुंचे तो तुरंत मणि के प्रति आसक्त होने के कारण तो आसक्ति से तो जाम्बवान सोचा ये व्यक्ति आया वो मणि को लेके ले जाएगा, तो सामंतक मणि के प्रति आसक्त होने के कारण नाते तो आसक्ति से क्रोध उत्पन्न हुआ। जाम्बवान के भीतर आसक्ति से क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध के कारण तो भगवान को पहचान नहीं पाया, भगवान को साथ युद्ध किया। और दूसरा बात यहाँ वहां पर प्रभुपाद जी भी बताते हैं, तो कभी कभी भगवान मारपीट करके वो आनंद लूटना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। कभी कभी वो फाइटिंग के द्वारा युद्ध करके वो आनंद लेने के लिए इच्छा करते हैं। तो इस कारण से जब भगवान के भीतर युद्ध करके आनंद लेने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई, तुरंत जोगमाया के द्वारा कुछ समय के लिए जाम्बवान को भुला दिए कि मैं उनका प्रभु हूं करके, मैं भगवान हूं करके भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान को जोगमाया शक्ति के द्वारा भुला दिए कुछ समय के लिए कि उनके साथ लड़ाई करना है, उनको लड़ाई करके आनंद लेना है। इसके कारण से तो कुछ समय के लिए जाम्बवान को भगवान भुला दिए। भगवान किसके साथ युद्ध करना है तो हमारे जैसे लोगों के साथ वो युद्ध नहीं करते, हमें तो क्या एक लाफा लगाएंगे हम तो गिर जाएंगे, तो फिर वो आनंद कैसे वो लेंगे। तो भगवान को आनंद लेना है, किसी के साथ युद्ध करना है तो उनके बराबर के एक व्यक्ति होना चाहिए। तो जाम्बवान उस समय ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो भगवान उनको चुने और युद्ध किए। और भगवान जाम्बवान के साथ युद्ध करके जब आनंद ले लिए, जब भगवान युद्ध करके आनंदित हो गए, तब जाके जाम्बवान को एहसास हुआ। जब भगवान आनंद हो गए युद्ध करने करके, तब जहां भगवान को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति परमेश्वर है, भगवान है, मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूं ये मेरे प्रभु है, तब जाके उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। हर एक स्तुति भाव तुम में बहुत लंबा है, जाम भगवान का अनेक लंबा स्तुति है, इस स्तुति को आप पढ़ लेंगे, इस समय कम है बता नहीं सकते हैं कि आप फिर स्तुति किया, जाम भगवान ने स्तुति किया और भगवान श्री कृष्ण उनके स्तुति में संतुष्ट होकर तो उनको जो पिटाई किए थे मारे थे, जाम भगवान को बहुत पीड़ा हो रहा था, जाम भगवान को बहुत कष्ट हो रहा था, जाम भगवान तड़प रहा था भगवान का मार खा करके, तो भगवान श्री कृष्ण उनके स्तुति के द्वारा संतुष्ट होकर तो उनके ऊपर अपने कमल हस्त को पसारे, अपने कमल हस्त को जैसे भगवान जाम भगवान के ऊपर रखे, तुरंत जाम भगवान के जो शरीर के भीतर, जाम भगवान का शरीर के भीतर जो पीड़ा हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, भगवान का कमल हस्त का पश जैसे हुई तुरंत जाम भगवान का पीड़ा दूर हो गया। और वहां पर भगवान का आने का जो अभिप्राय है वो बताने लगे, देखो द्वारका के भीतर मेरे ऊपर इस प्रकार का निंदा की कुछ रटना हुई है, एक निंदा की बहुत बड़ा गलत आक्षेप मेरे ऊपर आई है, मेरे 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 मुझे लगी है, तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि ये जो सामंतक मणि है सत्राजित राजा का, तो उनको मैं लेकर के उनको प्रदान करूं, तो ये सामंत मणि सारा समस्या का समाधान है। तो तुरंत जाम्बवान सारे विषय को समझ गया और वो सामंतक मणि के साथ अपने कन्या जाम्बवती, जाम्बवान का एक बहुत सुंदर कन्या थी, वो उनका नाम था जाम्बवती, वो जाम्बवती को और ये सामंतक मणि के साथ जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। तो ये सारे ही सुरंग के भीतर, गुफा के भीतर ये कार्य हो रही है और इसी प्रकार 28 बीत गया है और ये जो सुरंग के बाजू में, सुरंग के बाहर जो द्वारका के लोग खड़े थे, तो 12 दिन तक वो ऐसे खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के अपेक्षा करते हुए। उस सुरंग के बाहर द्वारका के लोग जो गए थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो सारे सुरंग के बाहर खड़े हुए हैं और 12 दिन बीत गया और 12 दिनों के बाद ये लोगों के भीतर धीरज नहीं रहा, वो तो अपने धैर्य को खो बैठे और उन्होंने सोचने लगे कि गुफा के भीतर कुछ अघटन घट गई है, और ये सोचकर वो गुफा छोड़कर तो फिर वो द्वारका आ गए। जब द्वारका आ गए तो भगवान श्री कृष्ण के जो पत्नी रुक्मिणी और उनके घर परिवार कुटुंब के लोग देखे कि द्वारका के लोग वापस आ गए लेकिन भगवान नहीं, द्वारका के लोगों के साथ द्वारका के लोग आए लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो तुरंत चिंतित हो गए, आदुकी हो रोने लगे और ये विषय के लिए वो सत्राजी राजा को दोषी करने लगे और बड़े दुखी होकर के तो चंद्रभागा देवी के पास गए सारे रुक्मिणी और उनके घर के लोग और अन्य रानियां, चंद्रभागा नदी को पूजा करने के लिए गए चंद्रभागा देवी को। तो चंद्रभागा देवी रानियों के पूजा से संतुष्ट होकर तो उनको आशीर्वाद दिए, चिंता नहीं करो तो मेरा ये आशीर्वाद है, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण आपको मिल जाएंगे। तो चंद्रभागा देवी का आशीर्वाद से तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ वहां पर पधारते हैं, पहुंचते हैं। और जब सारे द्वारका के रानिया, घर के लोग, द्वारका के लोग जब देखते हैं कि भगवान आए और उनके साथ साथ एक स्त्री भी है, कोई एक है, तो वो भी देख करके बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में हुए। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचने के बाद तो राजा उग्रसेन एक बहुत बड़ा सभा बुलाएं और ये सभा में विशिष्ट विशिष्ट राजाओं को बुलाएं और द्वारका के मुख्य व्यक्तियों को भी वो बुला लिए और बुला करके कितने सारे कृष्ण बन करके आ गए यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं तो सब आ गए बुलाए भगवान जम्बुवंत ना राजा उग्रसेन ने द्वारका के लोगों को राजाओं को बुलाए। तो वहां पर आने के बाद तो जम्बुवान भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार जम्बुवान से ये मणि को प्राप्त किए, जम्बुवान से भगवान श्री कृष्ण जम्बुवान से किस प्रकार ये मणि को प्राप्त किए वो बताएं। और बताने के बाद जो सत्राजित राजा भगवान श्री कृष्ण को दोषी के रूप में सोच रहा था, भगवान श्री कृष्ण ये मणि चुरा लिए इस प्रकार का सोच रहा था, तो इस कारण से वो सत्राजित ना अपने को बड़ा दोषी माना। भगवान श्री कृष्ण को ये मणि चुराने के विषय को लेकर अपराध मतलब दोषी मान रहा था सत्राजित राजा। तो ये मामला को लेकर सत्राजित राजा बड़े खिन्न होने लगे, अरे मैंने क्या कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतने बड़े दोष दिया, मैं भगवान के प्रति अपराध किया। अरे सामंतक मणि क्या है, एक भौतिक पदार्थ है, एक भौतिक पदार्थ के प्रति मैं आसक्त होकर भौतिक सामंतक मणि भौतिक पदार्थ के प्रति आकर्षित होकर मैं भगवान श्री कृष्ण को निर्बोध जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को दोषी माना। हाँ, तो मैं उनके चरण चरण में तो बहुत बड़ा अपराध किया। और ये बात वो मुंह में नहीं कह रहा था सत्राजित राजा, ऐसे वो अंदर अंदर एक अपने को एक दोषी के रूप में मान रहा था। ये सत्य बात है, सत्राजित राजा का बहुत बड़ा गुण दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। जब हम कभी भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो उसके प्रति सीरियस होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रति हमको कोई अपमान करता है तो उसको अपने ज्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। हमको कोई अपमानित करता है तो वो मामले के ऊपर हमें इतना गंभीर नहीं बनना चाहिए। हाँ, कह दिया, बोल दिया, अपमान कर दिया, ठीक है, उसके उससे ऐसे ऐसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन हम कोई भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं, हमारा शब्दों के द्वारा कोई भक्ति दुखी होता है, तो ये विषय के प्रति बड़े गंभीर होना चाहिए। हाँ, हमें कोई कर दिया इसके प्रति कोई ये नहीं करना चाहिए। तो वही सत्राजित राजा भगवान के चरण के चरण में अपराध किया था, ये अपराध के कारण से वो अंदर से सच से दिल से वो दुखी हो रहा था। उसी प्रकार हमारे जरा यदि कोई गलती हो जाता है, यदि हमें अंदर से हमें हृदय से दुखी होने लगेंगे, तो भगवान हमारा हृदय में है, वो हमारा अंदर से ये बात को जानकर वो कुछ प्रतिकार का रास्ता निकाल करके हमारे हृदय में बता देते हैं। तो सत्राजित राजा इस प्रकार जब अंदर से दुखी हो रहा था, मैंने भगवान के प्रति अपराध किया, मैं भगवान को दुखी की कर दिया, मैं भगवान के प्रति दोष दिया, इस प्रकार का जब एक क्षार एक भौतिक वस्तु के लिए मैं भगवान को ठुकराया, भगवान को इतना बड़ा आघात पहुंचाया, तो इस प्रकार जब अंदर अंदर वो दुखी हो रहा था सत्राजित राजा, तो भगवान उनको अंदर से बुद्धि प्रदान किए, ददामी बुद्धि योगम, भगवान उनको उनके भीतर बुद्धि प्रदान किए। और भगवान जब ये शक्ति प्रदान किए सत्राजी राजा अपने कन्या सत्यभामा सामंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण को प्रदान नहीं किया, सामंतक मणि के साथ साथ भी अपने कन्या सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। लेकिन प्रदान तो किया सत्राजी राजा ने सामंतक मणि और अपने कन्या सत्यभामा को प्रदान किया, लेकिन उनका इच्छा नहीं था ये मणि को भगवान को देने के लिए। तो उनका इच्छा इस प्रकार मनोवृत्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके कन्या सत्यभामा को ग्रहण किए, किंतु ये मणि को वापस कर दिए। ये मणि को भगवान श्री कृष्ण सत्राजित राजा को वापस कर दिए, किंतु उनके कन्या सत्यभामा को ग्रहण किए। और ये मणि को वापस करते हुए भगवान श्री कृष्ण सत्राजित राजा को बोले, देखो ये मणि को आप द्वारका में एक उपयुक्त स्थान में रख करके पूजा करो, और जो द्वारा ये द्वारका में कोई प्रकार दुर्भिक्ष अनाहार कोई प्रकार के अमंगल न हो। तो तभी से सत्राजित राजा भगवान श्री कृष्ण से ये मणि को लेकर तो पूजा करने लगा। जब इसी प्रकार का बात चल रही थी और राजा सत्राजित राजा ये सामंतक मणि को पूजा करके इस प्रकार का सोन प्राप्त कर रहा था, ठीक उसी समय द्वारका से अक्रूर हस्तिनापुर गया था। और जब अक्रूर द्वारका से हस्तिनापुर गया था ठीक उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ा गंभीर घटना उन्होंने देखा सुना, बहुत बड़ा गंभीर विषय को वो सुना और सुन करके वो आया द्वारका आया और ये संदेश भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रदान किया। तो ऐसा घटना ऐसा हुआ था हस्तिनापुर में वरुणावंत में। तो एक जगह में वरुणावंत में एक जतुगृह बनाया गया था और वो उसके भीतर पांडवों को रखा गया था कुंती महारानी के साथ, और रातारात वो जतुगृह में आग लगा दिया गया था और वो आग में जल करके वो सारे पांडव लोग मर गए थे। ये बात को जब भगवान श्री कृष्ण बलराम को भेजा गया, ये संदेश को जब हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण बलराम को भेजा गया संदेश को जब भगवान श्री कृष्ण बलराम सुने तो बड़े दुखी हुए, बड़े खिन्न हो गए। हाँ, जदियो भगवान श्री कृष्ण बलराम को पता था कि पांडवों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुरुवंश के लोगों के कुरु लोगों का दुखों का समभागी होने के लिए, उनके दुख के साथ अपने दुखी होने के लिए तो ऐसे बाह्य आचरण करने लगे। भगवान जानते थे कि कौरव पांडव लोग सहज है, पांडव लोग सुरक्षित है, किंतु ऐसे बाह्य आचरण बाह्य दृष्टि से दिखाने के लिए वो कुरु लोगों का कुरु लोग चाहते थे कि पांडव का निधन हो जाए, हमें निष्कंटक हस्तिनापुर का मालिक बने। तो ये कारण के लिए वो चाह रहे थे पांडव का मृत्यु हो जाए। तो ये एक बनावटी दुख दिखा रहे थे कुरु के लोग, कौरव लोग एक बनावटी दुख दिखा रहे थे सारा लोगों के सामने। तो वो भी एक भगवान कृष्ण बलराम भी ये वो भी एक बनावटी दुख का भागी होने के लिए वो भी ऐसा दिखाए। तो इस प्रकार का हो रहा था जब भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारका से हस्तिनापुर गए थे कुरु लोगों का साथ दुख भागी होने के लिए। और वास्तव में कुरु राजवंश के भीतर जो पितामह भीष्म जो वैप्रोध व्यक्ति थे, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो असलियत में दुखी हो रहे थे। जो धार्मिक व्यक्ति थे तो असल में वो दुखी हो रहे थे पांडवों जैसे धार्मिकों का इस प्रकार का घटना से। तो वहां पर जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण बलराम हस्तिनापुर गए थे, ठीक उसी समय द्वारका में बहुत बड़ा बात बन गई, क्योंकि वहां वो समय कृष्ण बलराम भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारका में नहीं थे, वो हस्तिनापुर आ गए थे। ठीक भगवान श्री कृष्ण बलराम की अनुपस्थिति में द्वारका में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। क्या ये षड्यंत्र? नहीं, षड्यंत्र रचा गया राजा सत्यजीत को मार करके ये मणि को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये राजा सत्यजीत का जो सुंदर कन्या थी सत्यभामा, तो ये सत्यजीत राजा प्रतिज्ञा किए थे राजाओं को अपने कन्या को प्रदान करने के लिए। जब ये षड्यंत्र रचा गया था सत्यजीत को मार करके वो मणि को उनसे छीनने का, तो ये षड्यंत्र का मुख्य लीडर मुख्य व्यक्ति था सत्यधन्वा करके एक राजा। ये सत्यधन्वा जो राजा था वो सत्यभामा को विवाह करने के लिए उत्सुक थे, आग्रही थे, लेकिन और सत्यजीत राजा भी प्रतिज्ञा किए थे ये राजाओं को अपने कन्या को प्रदान करने के लिए। बाद में सत्यजीत राजा अपने प्रतिज्ञा को भंग किए, प्रतिज्ञा को पालन नहीं किए, तो बाद में वो मणि के साथ सत्यभामा को तो भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने के कारण अनेक राजा लोग सत्यजीत राजा का दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए, क्योंकि चाह रहे थे सत्यभामा को विवाह करने के लिए, लेकिन उनको प्रदान नहीं किया भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने के कारण वो सब दुश्मन के रूप में खड़े हो गए। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जो समय नहीं थे तो वो प्लानिंग बना रहे थे कैसे ये सत्यजीत राजा को हमें मार सके। और ये जो प्लानिंग बना रहे थे, योजना बना रहे थे अनेक राजा लोग सत्यधन्वा राजा के तत्व को ध्वन से, तो ये प्लानिंग में ये षड्यंत्र में भगवान के दो वरिष्ठ भक्त, भगवान के दो विशिष्ट भक्त कृतवर्मा और अक्रूर, ये दोनों भी ये सत्यजीत राजा को मारने का जो षड्यंत्र बनाया रचा जा रहा था ये षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो ये तो भगवान के भक्त थे, ये तो अभक्त थे, ये लोग अभक्त थे, वो सत्यजीत राजा को मारने चाह रहे थे, लेकिन ये दो जो थे भगवान के वरिष्ठ भक्त थे, अक्रूर कितने बड़े भक्त थे और कृतवर्मा हाँ ये भी भगवान के भक्त थे, वो क्यों ये षड्यंत्र में शामिल हो गए? हाँ तो इसीलिए शामिल हुए कि वो अक्रूर और कृतवर्मा ये सामंतक मणि को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए जा रहे थे, और बाकी जो राजा लोग हैं वो कोई कोई सत्यभामा को विवाह नहीं कर पाए, निराश हो गए, और निराश के कारण वो सत्यराजी राजा के साथ सत्यराजी राजा के साथ बदला लेने के लिए चाह रहे थे, और कोई कोई राजा वो मणि को लेने के लिए भी चाह रहे थे, सत्यराजी के राजा को मार करके वो मणि को प्राप्त करना चाह रहे थे। इसी प्रकार षड्यंत्र बनाया जा रहा था द्वारका के भीतर, और तो मैं अभी कहा तो ये लोग तो अभक्त थे, तो इस प्रकार का घृणित कार्य में जोड़ गए, लेकिन ये अक्रूर और कृतवर्मा भगवान के भक्त होने के बावजूद भी ये इसमें कुत्सित कार्य में क्यों अपने को जुड़े? तो वहां पर जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्य अपने मत को प्रदान करते हैं कि ये जो अक्रूर है, अक्रूर यदि वो एक महान भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, किंतु वो ब्रजवासियों के द्वारा अभिशप्त हुए थे। अक्रूर जीव गोस्वामी बताते हैं ये अक्रूर महान भक्त इस पर घिनौने कार्य में क्यों जोड़े ना, ये अक्रूर जदियो महान भक्त है वो वृंदावन वासियों के द्वारा अभिशप्त हुए थे। जो समय अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों से अलग कर दिए और ब्रजवासियों का हृदय में एक दुख ला दिए, भगवान श्री कृष्ण को उनसे छीन करके, भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों से अलग करके ब्रजवासियों के वृंदावन वासियों के हृदय में एक प्रकार का दुख उत्पन्न करने के कारण, तो ब्रजवासी वृंदावनी वासियों के अभिशप्त होने के कारण सत्यराजी राजा ये अक्रूर इस प्रकार का पाप कार्य में जोड़ गए। दूसरी बात है कृतवर्मा भी तो भगवान के भक्त थे। कृतवर्मा यदिओ भक्त थे लेकिन कंस के साथ उनका घनिष्ठता थी, तो कंस के साथ घनिष्ठता होने के कारण ये पाप कर्म का प्रतिक्रिया का स्वरूप उन्होंने कृतवर्मा भी दुष्टों का साथ हो गए, और ये सारे राजाओं का उस्कान के कारण, मतलब उत्साहित करने के कारण, तो एक दिन रात के समय ये सत्वाधना तो सत्यराजित राजा के घर के भीतर प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया सारे स्त्रियां वहां पर चिल्ला उठी आवाज की, और वहां पर सत्यभामा भी थी, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी सत्यभामा वहां पर भी थी, और ये सत्वाधना सत्यराजित राजा के घर के भीतर प्रवेश किया और हथियार के द्वारा सत्यराजित राजा को वध किया। जब वध किया सारे स्त्रियां बहुत जोर से रोने लगी और वध करके निकल गया, और जब देखा सत्यभामा देखा अपने पिताजी का मृत्यु हो गई है, वध हो गया है, तो तुरंत रोने लगी और तुरंत उस सब का मृतदेह का संस्कार नहीं किया गया, तो मृत सब को एक तैलागार में रखा गया, और तुरंत सत्यभामा निकल पड़ी हस्तिनापुर की ओर, और हस्तिनापुर में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण बलराम को अपने पिता का मृत्यु का संदेश खबर देते हैं सत्यभामा, और ये संदेश को जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम तुरंत तो दुखी हो जाते हैं, एक साधारण संसारिक व्यक्ति के भांति वो रोने लगते हैं, सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़ते हैं, एक संसारी साधारण व्यक्ति के भांति वो भी रो पड़ते हैं। यदि वो भगवान श्री कृष्ण को ये भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, किंतु ये संसारी के मनुष्य जैसे वो लीला करने के कारण वो भी ऐसे दिखाते हैं कि देखो मैं पत्नी का दुख में भी समभागी हूँ, तो रो पड़े। और बाद में कृष्ण बलराम जब द्वारका में पहुंचते हैं और विचार करते हैं, और ये द्वारका के भीतर ये सत्यधना जो एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, तब भगवान श्री कृष्ण सोचे ये ऐसे एक पापी व्यक्ति का वध होना चाहिए। जब इस प्रकार का विचार भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, ठीक उसी समय वो सत्यधना राजा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए प्लानिंग योजना बना रहे हैं। तुरंत सत्यधना कृतवर्मा के शरण में गया। कृतवर्मा कौन था? भगवान के भक्त था। तो कृतवर्मा के शरण में गया और जाकर के कृतवर्मा ने सत्वघन ने कृतवर्मा के शरण में जाकर सत्वघनवा को सत्वघन कृतवर्मा के शरण में जाकर कृतवर्मा को बचाने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन कृतवर्मा भगवान के भक्त थे और वो मना कर दिए कि देखो मैं कृष्ण बलराम को अपमान नहीं दे सकता। कृष्ण बलराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान को अपमानना करके भगवान को अपमानित करके कोई मृत्यु के कबल से बच नहीं सकता। मृत्यु कौन है? मृत्यु इतनी शक्तिशाली क्यों है ना? वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो भगवान का ये जो मृत्यु शक्ति है, हाँ, उनका प्रतिनिधि है। भगवान को अपमानित करके मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और कृतवर्मा भी सत्वघ्नवा को सावधान करा दिया। देखो कंस कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, अनेक राक्षस राजाओं का भी मदद था, सहारा था उनको, फिर भी कंस जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भगवान के द्वारा बध हुआ। और जरासंध जैसे इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी एक बार नहीं, अठारह बार भगवान के द्वारा परास्त हुआ। तो सत्वघ्ना कृतवर्मा से जब इस प्रकार से निराश का वाणी सुना तो फिर वो अक्रूर के शरण में गया कि अक्रूर आप तो इतने बड़े भक्त हो, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के क्रोध से बचा सकते हो, कृपा करके मुझे बचाओ। तो अक्रूर भी हाथ उठा दिया। अक्रूर भी कृतवर्मा के जैसे कह दिया, देखो मैं कृष्ण बलराम का क्रोध से मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं है, ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जो व्यक्ति के जो भगवान श्री कृष्ण के शक्ति सामर्थ्य को नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति ही भगवान को अपमान देने के लिए और उनका विरोध करने के लिए और भगवान के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए साहस करेगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा कथा कह रहा हूँ कि मैं प्रभु बोले थे कि थोड़ा समय कहने के लिए, तो इसलिए 2 मिनट खत्म हो गया। तो इसी प्रकार लड़ाई करने के लिए बंद करूं तो इसी प्रकार लड़ाई हो रहा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सामर्थ्य के विषय में नहीं जानता है, ओके बंद करता हूँ। सामर्थ्य के विषय में नहीं जानता है तो ऐसे व्यक्ति साहस करेगा भगवान को अपमान देने के लिए। तो इसी प्रकार अक्रूर जब सत्वघ्ना राजा को इस प्रकार निराश का वाणी सुना दिया तो तुरंत सत्वघ्ना एक अश्व शक्तिशाली अश्व को लिया और द्वारका छोड़ और सामंतक मणि को अक्रूर को दे करके सत्वघ्ना राजा एक घोड़ा के ऊपर बैठ करके द्वारका के बाहर चला गया। जब पता लगा भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान ये सत्वघ्ना राजा द्वारका छोड़कर बाहर जा रहा है तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण बलराम सत्वघ्ना राजा का पीछा करते हैं। और सत्वघ्ना राजा जाकर के मिथिला के पास पहुंचता है और वहां पर उनका घोड़ा का मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो सत्वघ्ना पैदल दौड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम भी एक सदाचार को रक्षा करने के लिए तो वो अपने रथ को छोड़कर वो भी पैदल में वो सत्वघ्ना को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन के द्वारा सत्वघ्ना का वध कर देते हैं। और जाकर जब देखते हैं अपने कपड़े को अपने कपड़ा को देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास तो समंतक मणि नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बलराम जी को, प्रभु भैया ये व्यक्ति के पास तो समंतक मणि नहीं है। तो वहां पर बलराम जी उनको कहते हैं कि ये व्यक्ति द्वारका में कोई व्यक्ति के पास समंतक मणि को छुपा है, आप जाओ द्वारका में जाओ पता लगाओ किसके पास वो समंतक मणि को छोड़ा है। तो ये कहकर बलराम ये मिथिला के राजा के दरबार में जाते हैं कि मिथिला के राजा उनके मित्र थे और मित्रता के कारण बलराम जी वहां पर कुछ साल वहां पर रुक जाते हैं। तो वो वही सुजग लेकर के दुर्योधन मिथिला में जाते हैं और बलराम जी से गदा युद्ध शिक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचते हैं और ये सत्यभामा को ये संदेश देते हैं कि आपका पिता का जो दुश्मन है हत्यारा है मैं उनका वध कर दिया, किंतु दुख की बात है हाँ उनके पास सामंत तो नहीं, मनी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात कहकर के सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण उनके सत्राजित राजा का अंत्येष्टि क्रिया समापन करते हैं। तो जब ये अक्रूर और कृतवर्मा को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण सत्वधन का वध कर दिए और द्वारका में वापस आ गए, तो ये जब द्वारका वापस आए सत्वधन का वध हो कर दिए, तो ये बात को सुनकर अक्रूर और कृतवर्मा द्वारका छोड़ करके काशी चले जाते हैं। जब अक्रूर काशी चले जाते हैं तो द्वारका के वासी दुखी हो जाते हैं, अरे अभी अक्रूर द्वारका छोड़ करके काशी चले गए तो अभी तो द्वारका के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ जाएगा। तो ऐसा बात, ये अंधविश्वास है, जहाँ पर भगवान होते हैं वहां पर कोई इस प्रकार का अमंगल नहीं होता। लेकिन द्वारका के लोग सोचे कि अक्रूर द्वारका में अभी नहीं है, हाँ तो अभी दुर्भिक्ष महामारी नाना प्रकार का अमंगल उत्पन्न हो जाएगा आएगा। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब सुनते हैं कि लोग द्वारका का वासियों के मन के भीतर इस प्रकार का एक अक्रूर के प्रति है, तो क्यों है ना अक्रूर के जो पिता थे स्वफलक, एक बार वाराणसी में बारिश नहीं हुआ तो ज्योतिष के कहने के कारण तो वाराणसी के जो राजा थे तो राजा अपने कन्या गांधिनी को अक्रूर के पिता स्वफलक को विवाह करा दिए। जैसे वाराणसी के राजा अपनी कन्या अक्रूर के पिता स्वफलक के साथ विवाह करा दिए, तुरंत वाराणसी के ऊपर काशी के ऊपर बारिश होने लगा। तो तभी से लोगों के भीतर इस प्रकार के एक धारणा बन गई है कि ये अक्रूर के पिता एक पुण्यवंत व्यक्ति है, और ये पुण्यवंत व्यक्ति का पुत्र अक्रूर होने के कारण तो वो भी तद्रूप इतने शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। तो इतने शक्तिशाली व्यक्ति जब राज्य छोड़ देता है तो निश्चित रूप से पुण्यवंत व्यक्ति जब राज्य छोड़ देते हैं तो राज्य के ऊपर नाना प्रकार का अमंगल अशुभ उत्पन्न हो जाता है। तो द्वारका के वासी ऐसे ही अशुभ अमंगल की सोचने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार का जाने तो अक्रूर को वाराणसी से बुलाए, और अक्रूर जो थे भगवान श्री कृष्ण पितृव्य थे, पितृव्य जैसे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अक्रूर के पास सामंतक मणि है। जब अक्रूर वाराणसी से द्वारका पहुंचे तो बड़े आदर दिए, सम्मान के साथ वो सम्मान के साथ कहे कि कृपा करके आप ये द्वारका वासियों को आनंद देने के लिए, ये मेरे घर परिवार को सुखी करने के लिए, सत्यभामा को आनंद देने के लिए आपके पास जो ये मणि है वो मणि को आप दिखा दो, और ये मणि का अधिकारी अभी कोई नहीं है, अभी सत्यभामा का जो पुत्र है, अभी सत्राजित राजा का वध हो गया है, और ये सत्यभामा भी वो मणि को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन सत्यभामा का जो पुत्र है वो मणि का अधिकारी है, तो कृपा करके आपके पास जो मणि है ये द्वारका वासियों के सामने दिखा दो। तो लोगों को पता चले कि आपके पास ये सामंतक मणि है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने के कारण तो अक्रूर तो सारे द्वारका के लोगों के सामने मणि को दिखा देते हैं। दिखाने के बाद तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को वो मणि को वापस कर देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे एक पुण्यवंत व्यक्ति हो जो, क्योंकि ये मणि इतने शक्तिशाली है कोई साधारण व्यक्ति के पास रह नहीं सकता, जेहेतु आप एक पुण्यवंत व्यक्ति हो इसके कारण ये मणि आपके पास रहना चाहिए, तब तक रहना चाहिए जब तक सत्यभामा का पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक सामंतक मणि अक्रूर के पास रहा, और भगवान श्री कृष्ण उनको आदेश दिए तो आप ये मणि का पूजा करो, जहाँ पर ये मणि रहता है कोई प्रकार का अमंगल नहीं होता है। तो कहने के अर्थ ये होता है कि जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो हम भगवान को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार भक्तों को खास करके चेतावनी ये लीला से मिलती है, हमें भौतिक वस्तु से अलग होकर हमें हमारा हृदय को ऐसे बनाए, तो भगवान कंस के बंदीशाला में जो जन्म लिए थे कंस का बंदीशाला को छोड़कर हमारे हृदय में कल जन्म ले लें। अरे भगवान श्री कृष्ण कंस के बंदीशाला में जैसे जन्म लिए, सारे जो बंधन है अब जो जल का जो ताला है ये बंधन है सब अपने आप खुल गया। उसी प्रकार भगवान कल के दिन में जब हमारे हृदय में जन्म लेंगे तो हमें भी संसार की बंधन से काम क्रोध लोभ मोह है जो बंधन से हमें मुक्त हो जाए। तो ये मुक्त होने के लिए भगवान के चरण में और उनके भक्तों के चरण में विनती करना चाहिए कि प्रभु हाँ हमें भी और भगवान के भक्तों को भी प्रार्थना करना चाहिए हम मेरे हमारा हृदय को ऐसे बना दो कल हाँ कल जैसे पवित्र तिथि में पवित्र दिनों में भगवान हमारा हृदय में प्रकट हो जाओ। और भगवान हृदय में प्रकट होने से हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्रील प्रभुपाद की। सुधांशु प्रभु पीछे देख करके मुझे जल्दी करते हैं इसीलिए मैं कथा को जल्दी जल्दी बता दिया तो आपको किस प्रकार का रसपान हुआ तो हरे कृष्ण।